पृष्ठ संख्या 62। फंतासी मुक्ति बोध की रचना शैली तो है ही, वह उनके रचनात्मक स्वाभिमान का घोषणा पत्र भी है। उन्होंने अपने निबंधों में फंतासी का विवेचन विश्लेषण किया है। उनके मतानुसार फंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। यहाँ कल्पना का मूल कार्य मन के निगूढ़ तत्वों को प्रोद्भासित करते हुए विभिन्न रंगों में उन्हें अपने समस्त सौंदर्य के साथ उद्घाटित करना रहता है। उनकी मान्यता है कि फंतासी में विभाव पक्ष के कल्पना बिंब प्रतीकात्मक होकर अपनी मूल भूमि से इतने दूर जा पड़ते हैं कि वह विभाव पक्ष का भूगोल और इतिहास छोड़कर उसका दिक्काल त्याग कर अपना एक स्वतंत्र भूगोल और इतिहास, अपना स्वतंत्र दिक्काल स्थापित कर लेते हैं। उनका अभिमत है कि फंतासी के प्रयोग से जीवन ज्ञान को कल्पना के रंगों में प्रस्तुत किया जा सकता है और वास्तविकता के प्रदीर्घ चित्रण से बचा जा सकता है। कामायनी एक पुनर्विचार, पृष्ठ 8 से 14। जाहिर है कि मुक्तिबोध फंतासी के प्रसंग में अवचेतन को सर्वोपरि महत्व देते हैं। वह उसके भीतर जीवन तथ्यों की उपस्थिति अवश्य मानते हैं, किंतु उनकी दृष्टि में फंतासी के अंतर्गत कभी-कभी जीवन तथ्य अबोधगम्य हो जाते हैं। प्रकट है कि मुक्तिबोध काव्य चेतना पर अवचेतन का हावी होना फंतासी की निर्मिति के लिए अपरिहार्य मानते हैं। उनकी कविताएं उनकी इस मान्यता को पुष्ट एवं चरितार्थ भी करती हैं। इस बहस का दूसरा पहलू भी है। अधिसंख्य अन्वेषक इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किसी वस्तु विषय का कल्पात्मक रूप फंतासी की श्रेणी में आ सकता है यदि उसकी निर्मित विशुद्ध स्वांतः सुखाय हुई हो। इस प्रकार की विशुद्ध स्थितियां मिलती भी हैं। एरिक क्लिंगर के मतानुसार इन्वर्टेड कामा आंतरिक अनुभवों के अंतर्गत कथा निर्मितियां, योजना निर्माण, अतीत अनुचिंतन, बीती हुई घटनाओं का विश्लेषण, आगामी स्थितियों की पूर्व कल्पना, स्वयं से प्रश्न करना, लघु प्रसार वाली विविध स्मृतियों में डूबना, विश्रृंखल बिंबों के प्रति लगाव, स्वप्न अनुभव आदि इसके घटक हो सकते हैं। यह जानने का दावा कोई भी नहीं करता कि किसी फंतासी का निश्चित रूप से कहाँ होता है, जिसके आगे उससे संबद्ध किंतु दूसरी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फैंटेसी, पृष्ठ 6। क्लिंगर की बात समझ में आती है। अतीत चिंतन, दिवा स्वप्न, स्वप्न और वर्तमान तथा भविष्य के विषय में मानसिक स्तर पर प्रश्नानुकूल होना या एक नए संसार की कल्पना में लीन होना फंतासी के अंतर्गत है, और उनमें अवचेतन का एक महत्वपूर्ण सीमा तक क्रियाशील होना भी स्वाभाविक है। किंतु यह मानना कि फंतासी का आधार अवचेतन है बहुत सही नहीं है। स्मृति भी फंतासी का एक महत्वपूर्ण घटक है। कामायनी का समूचा ताना बाना फंतासीय है। मन के अतीत चिंतन, देव जाति का विलास और वैभव से लेकर श्रद्धा के दिव्य स्वप्न, मन का ईड़ा के साथ मनाचार और उसकी परिणत तक फंतासी के अनेक रूप सामने आते रहते हैं। पृष्ठ 63। लज्जा सर्ग में लज्जा का मानवीकृत बिंब श्रद्धा के अवचेतन को अवश्य खोलता है, किंतु वह श्रद्धा पर हावी नहीं होता। श्रद्धा की निजी आकांक्षा उसके साथ बहस करती है और तर्क वितर्क की स्थिति के बाद जो समाधान सामने आता है वह उसे स्वीकार करती है। उसका यह तर्क वितर्क उसके मन का ऊहापोह भर है, उसके अवचेतन का उसके व्यक्तित्व पर हावी होना नहीं। इला सर्ग में मनु का हल्यूसिनेशन की सी स्थिति में काम से वार्तालाप करना भी उसकी आत्मतर्कणा ही है, उसकी अवचेतनग्रस्तता नहीं। ऐसा होता तो अंधेरे में के काव्यनायक की भांति वह भी अंत तक अपने मनःकल्पित आतंककारी जुलूस से बचने के लिए भागते रहते। मनु काम के शाप का अर्थ और औचित्य समझ लेते हैं और उसके बाद वह उससे उबरने के लिए ईड़ा का आश्रय लेते हैं। चिंता सर्ग में देव जाति के वैभव विलास का चित्रण भी फंतासी की श्रेणी का है। जिसमें स्मृति का ही आधार है और चेतन का नहीं। राम की शक्ति पूजा में भी स्मृति को ही फंतासी का आधार बनाया गया है। यों इस कविता में स्थूल कथाधार होने के कारण फंतासी के लिए बहुत गुंजाइश नहीं थी। कामायनी भी कथाधार है, किंतु उसका फलक बड़ा होने के कारण उसमें मनोचित्रणात्मक स्थितियों के लिए प्रसंगों की उद्भावना संभव थी। फिर प्रसाद ने कथा की समूची परिकल्पना मनोभावों के उद्भव और विकास के संदर्भ में की थी। राम की शक्ति पूजा में केवल एक स्थल पर फंतासीय स्थिति आती है। दिन भर के युद्ध के बाद अपने शिविर में सेनानायकों तथा परामर्शदाताओं के बीच बैठे विषण राम को सहसा ही सीता से अपने प्रथम मिलन का स्मरण हो आता है। घने अंधकार में बिजली की गोंद के समान यह समूचा प्रकाश बिंबात्मक है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। किंतु स्मृत्याश्रयी इस बिंब के ब्याज से राम क्षण भर के लिए जब अपनी वर्तमान स्थिति से मुक्ति पाकर अतीत की कुछ घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने लगते हैं, तो वे हल्यूसिनेशन की सी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर ताड़का सुबाहु बिराद शिरस्त्र दूषण खर। पर यह स्थिति क्षणिक ही है, क्योंकि इसी क्रम में उन्हें शक्ति के भीषण रूप का स्मरण हो आता है, जिसे उन्होंने आज युद्ध में देखा था। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन खिंच गए दृगो में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। रावण का अट्टहास सुनना भी हल्यूसिनेशन की ही स्थिति है, किंतु इसी के साथ हुए वर्तमान में लौट आते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। राम का स्मृति की प्रगाढ़ता में देखना और सुनना कामायनी के लज्जा तथा ईड़ा स्वर्ग की याद दिलाता है, जहाँ श्रद्धा अपने ही पृष्ठ संख्या 64 मनोभाव को नारी भूति के रूप में देखती है और मनु अपने ही आत्मधिक्कार को काम के शाप के रूप में सुनते हैं। राम की शक्ति पूजा में यह एकमात्र फंतासीय प्रकरण है। हनुमान का ऊर्ध्व संचरण शक्ति से और अंजना के रूप में शक्ति का प्रकट होना, ये सभी बिंबात्मक प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं, जिनकी चर्चा बिंब के प्रसंग में हो चुकी है। हनुमान के ऊर्ध्व संचरण के प्रसंग में प्रलय का जो बिंब दिया गया है, वह एक फंटास्टिक बिंब अवश्य है, किंतु वह विशुद्ध फंतासी की श्रेणी में नहीं आता। अंधेरे में की स्थिति एकदम भिन्न है। मुक्तिबोध फंतासी को वस्तु विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से हिंदी कविता को अपनी महत्वपूर्ण देन मानते हैं। फंतासी के क्षेत्र में मुक्तिबोध का चिंतन परक एवं रचनात्मक योगदान निसंदेह अतर्क है। मुक्तिबोध से पहले प्रसाद और निराला तथा अन्य अनेक रचनाकार भी फंतासी के रचनात्मक महत्व को अपनी रचनाओं के द्वारा रेखांकित कर चुके थे। फंतासी परक उनके प्रयोग यह भी सिद्ध करते हैं कि फंतासी का संबंध अवचेतन से ही नहीं, चेतन से भी है, बल्कि वास्तविकता भी यह है कि फंतासी की निर्मिति होती है, जबकि अवचेतन परक लेखन स्वतः चालित लेखन ऑटोमेटिक राइटिंग की श्रेणी में आता है, जो मूलतः मनोचिकित्सा की एक प्रविधि है। यह और बात है कि नई कविता में जहाँ अनेक काव्यतर प्रतिमानों को शामिल कर लिया गया, वहाँ स्वतः चालित लेखन को भी मान्यता दे दी गई। फिर भी मुक्तिबोध को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अवचेतन परक लेखन शैली को पक्षधरता के साथ स्थापित करने का जी तोड़ प्रयत्न किया और उसी के नाते उन पर चर्चा होती है। किंतु यह प्रश्न अवश्य उठता है कि फंतासी कवि के मूल कथ्य का पर्याय या प्रवाचक कहाँ तक हो सकती है। मुक्तिबोध के एतत् संबंधी एक वक्तव्य का हवाला बिंबों के संदर्भ में दिया जा चुका है, जिसमें वह अपने प्रतीकों तथा रूपकों को आगमी के स्वप्न को फैलाने वाला बताते हैं, और यह भी कहते हैं कि वे फंतासी में विचरण करते से रहते हैं और उनके मतानुसार उनकी फंतासी का भविष्य में चरितार्थ होना निश्चित है। अंधेरे में को केंद्र में रखकर विचार करना अधिक प्रासंगिक होगा। रचना विधान की बात अभी नहीं, अभी यह विचारणीय है कि कथ्य की दृष्टि से मुक्तिबोध की फंतासी का वैशिष्ट्य क्या है। अंधेरे में सीधे सीधे दो पक्ष आमने सामने हैं, एक अपनी आशंकाओं, चिंताओं, संतरासों के साथ आत्म त्राण के लिए निरंतर भागता का विनायक, दूसरा उसकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर झलक मारता हुआ कोई अति प्राकृत व्यक्तित्व। प्रथम पक्ष की सारी सामग्री कवि के निजी जीवन से जुड़ी हुई है। सिरफिरा व्यक्ति पागल भी मुक्तिबोध के निजी जीवन से संबंधित या उनका ही प्रतिरूप है, क्योंकि वह वर्तमान धुरा अवस्था की ही बात कहता है, भविष्य के लिए स्वप्न नहीं देता। दूसरा पक्ष पूरी तरह इच्छित विचारणा, विशफुल थिंकिंग की संरचना है। किमाकारों, हनुमानों तथा ज्योति पुरुषों की आत्मरक्षार्थ अवतारणा भविष्य का कोई स्वप्न नहीं दे सकती। अंततः कवि को स्वयं ही कहना पड़ता है कि वह सर्वत्र अपनी निजी अभिव्यक्ति की तलाश कर रहा है। मुक्तिबोध की फंतासियाँ भविष्य का कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं करती, उनके फंतासी गांधी जी भी भविष्य को एक शिशु के प्रतीकत्व के सहारे काव्यनायक को सौंपते हैं। जाहिर है कि इस सबसे मुक्तिबोध का यह दावा चरितार्थ नहीं होता कि उन्होंने अपने प्रतीकों, रूपकों, फंतासियों के माध्यम से भविष्य का कोई रूप प्रस्तुत किया है। हाँ, उनकी फंतासियों का महत्व इसलिए आवश्यक है कि उन्होंने उनके माध्यम से वर्तमान की विभीषिका को जीवन रूप में उद्घाटित किया है। पृष्ठ संख्या 65। जो भविष्य के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए आम आदमी को विवश अवश्य करेगी, यह काम हर अच्छी कविता करती है। वह कविता ही क्या जो कुछ सोचने के लिए आधार न प्रदान करे। फंतासी इस संप्रेषण के लिए एक सशक्त माध्यम है। मुक्तिबोध ने भी इस माध्यम का सहारा लिया है, बल्कि बड़े सशक्त रूप में अपनी बात इस माध्यम से कही है। अंधेरे में कविता अवचेतन के बिंबों के सहारे रची गई है। मुक्तिबोध की पूर्व संदर्भित आत्म स्वीकृतियों के क्रम में उनका यह वक्तव्य भी महत्वपूर्ण है। सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवलि में चिंतन, डॉट डॉट डॉट, अजिगर्त समान ही, व्यक्तित्व अपना ही अपने में खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। मुक्तिबोध इस अर्थ में प्रशंसनीय अवश्य है कि वे अपने बारे में ईमानदार रहे हैं। बिंबों में सोचना लगभग विक्षेप की स्थिति है, और मुक्तिबोध स्वयं आगे चलकर सिरफिरे विक्षिप्त आदमी को अपना प्रतिरूप मान लेते हैं। उनकी यह ईमानदारी उन्हें उन आदिम लोगों की विचारणा पद्धति से जोड़ती है जिन्होंने सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में इतने सशक्त मिथक रचे, जो बाद में संस्कृतियों के आधार बने। मुक्तिबोध में आदिम बिंबात्मक चिंतन की सहज प्रतिभा है, और वह स्वयं भी इसे रेखांकित करते हैं। यहाँ एक स्पष्टीकरण प्रासंगिक होगा कि आदमी बिंबात्मक चिंतन में बौद्धिक विश्लेषण का दखल नहीं था, और उसके समक्ष कथ्य और शिल्प का विभेद भी नहीं था। मुक्तिबोध के कविता का आदिम गुण था और आधुनिक युग तक प्रसारित हो चुका ज्ञान विज्ञान भी। पर मुक्तिबोध के बिंब जिस तरह मन को बांधते हैं, उस तरह उनके विचार नहीं। उनका एक छोटा सा बिंब लीजिए। सब ओर गरम धार सा रेंगता चला, काल बांका तिरछा। काल सर्प की गति और प्रकृति का ऐसा जीता जागता बिंब कोई आद्य मिथक निर्माता ही रच सकता है। मुक्तिबोध आदिम फंतासीय बिंबों के निर्माण में अप्रतिम है। मुक्तिबोध ने फंतासी की रचना प्रक्रिया पर अपने ढंग से विचार किया है। वह कला के तीन क्षण बताते हैं। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार वह फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है पृष्ठ संख्या 66, वह फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल की ही प्रतिकृति है। मुक्तिबोध के द्वारा वर्णित कला के दो पक्ष क्षण भट्टनायक के अविधा और भावकत्व से मिलते जुलते हैं। कला का तीसरा क्षण मुक्तिबोध की अपनी रचना प्रक्रिया तथा रचना प्रकृति का परिचायक है। इस तीसरे क्षण में रचनाकार अपने अवचेतन को खुली छूट दे देता है जिसके नाते मूल तथ्य का निरूपण भी हो सकता है। जाहिर है कि यह तीसरा क्षण स्वतः चालित लेखन का आश्रय लेता है। मुक्तिबोध की कविताओं को उनके इस विवेचन के आधार पर भली भांति व्याख्यायित किया जा सकता है। प्रायः ही उनकी कविताओं का मूल तथ्य गुम हो जाता है और पाठक फंतासी से आरंभ करके अंततः फंतासी में ही उलझा रह जाता है। यह तो हुई मुक्तिबोध के विवेचन के संदर्भ में उनकी कविताओं की प्रकृति की विवेचना। इसकी व्याख्या मुक्तिबोध की बहुत सी कविताओं के आधार पर की जा सकती है। संप्रति हम अंधेरे में को ही विवेच्य मानकर चल रहे हैं। फंतासी से फंतासी तक की यह यात्रा किसी सीमा तक समझ में आने वाली हो सकती है यदि उसके बिंब और प्रतीक व्यंजक बने रहें। किंतु मुक्तिबोध में व्याख्या की अध्यापकीय प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि उनकी कविता में व्यंजकता का आम तौर से अभाव हो जाता है। प्रायः सर्वत्र वे अपने प्रतीक बिंबों का अर्थोद्घाटन करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप फंतासी कमजोर हो जाती है। अंधेरे में का ही आरंभिक अंश देखें। कविता का आरंभ एक सशक्त भयजनक बिंब से होता है। अंधेरा कमरा तिलस्मी खो में किसी बंदी की मुक्ति के लिए छटपटाहट प्लास्टर और चूने का गिरना हनु या मनु जैसे एक बलिष्ठ भव्य चेहरे का उभरना पहाड़ी के पार बावड़ी अंधेरे में निस्तब्ध जल के भीतर श्वेत कुहरीली आकृति के कुहरीले चेहरे का फैलना जंगल के वृक्षों पर बिजलियों का चमकना तिलस्मी खोह के शिला द्वार का भयंकर ध्वनि के साथ खुलना लालम शाल लाल कुहरा और रक्त लोक स्नात एक प्रभावशाली गौरववर्ण दीप्त दृक् सौम्य मुख अजानुभुज व्यक्तित्व का प्रकट होना यह समूचा परिदृश्य एक सशक्त फंतासी का निर्माण करता है। किंतु इसके ठीक बाद कवि सारा रहस्य खोल देता है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निजी संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। यह लंबी चौड़ी व्याख्या फंतासी के मायावरण को हल्का कर देती है और उसके रूपक की श्रेणी में ला देती है। कविता के अंत में भी यही हुआ है और उससे पहले एक बार और। यदि यही बात कविता में कहीं एक स्थान पर संकेत रूप में बताई गई होती तो फंतासी का सम्मोहन कम से कम टूटता। प्रसाद की फंतासियों से तुलना करने पर इस अंतर को समझा जा सकता है। वैसे मुक्तिबोध के व्याख्यानशील व्यक्तित्व की बात छोड़ दें तो उनकी फंतासियाँ बड़ी सशक्त हैं। आरंभिक फंतासी जिसका संदर्भण पिछले पैराग्राफ में किया गया है अपने आप में अत्यंत सशक्त है। पृष्ठ संख्या 67, उसमें दो फंतासीय संदर्भ हैं जो समग्रतः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला संदर्भ अंधेरे कमरों का है, दूसरा पहाड़ी के पार तालाब जंगल और तिलस्मी कंदरा का। दोनों की फंतासी निर्माणक आधार पंक्तियाँ दी जा रही हैं। एक जिंदगी के डॉट 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 कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार बार डट डट डट, बार बार बार। वह नहीं दिखता, डट डट डट, नहीं ही दिखता, किंतु वह घूम रहा है, डट डट डट, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, डट डट डट। मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु, डॉट डॉट डॉट, कौन मनु। दो, बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, डॉट 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 डॉट, अंधेरे सब ओर, निस्तब्ध जल, डॉट डॉट डॉट, सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष, डॉट 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 डॉट, वृक्षों के शीर्ष पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ, वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से, डॉट 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 डॉट, लाल लाल कुहरा, डॉट 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 डॉट, सामने रक्ता लोक स्नात पुरुष एक। ये दोनों फंतासियाँ संग्रथित हो जाती हैं एक अति प्राकृत बीमाकार के माध्यम से, जो संस्कारतः जाना पहचाना है किंतु तत्काल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, एक अस्वस्तिदायक फिर भी भयावह माहौल रचता है। यह दो भिन्न परिवेशी फंतासियों का संग्रथन। अगली उल्लेखनीय फंतासी है आधी रात में सांकल का रह रहकर बजना और काव्यनायक का उसे खोलने का साहस न कर पाना, डॉट डॉट डॉट, साकल ही रह रहा बजती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, डॉट 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 डॉट, साकल की रह रहा बजती है द्वार पर, आधी रात इतने अंधेरे में कौन कौन आया मिलने। अंततः सांकल खोलने का साहस जुटा पाना और परिणाम स्वरूप सन्नाटे एवं चीख का अनुभव इस फंतासी को आत्यंतिक रूप से प्रभावशाली बना देता है। इससे पता चलता है कि फंतासी के निर्माणक सहधर्मी तत्वों की कितनी गहरी पकड़ है। मुक्तिबोध में सन्नाटा और चीख दो विपरीत स्थितियां हैं। अंधकार और सन्नाटे में कुत्तों और सियारों की आवाज़ें अंधकार की भयावहता को बढ़ाने वाली भी होती ही हैं। ऐसे में किसी पक्षी का अचानक चीखना सन्नाटे को तो तोड़ना ही है, अंधकार को भी छिन्न भिन्न कर देता है। पृष्ठ संख्या 68। कमजोर घुटनों को बार बार मशल लड़खड़ाता हुआ मैं, डॉट डॉट डॉट, द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन, सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर, डॉट डॉट डॉट, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की ध्वनि से, डॉट डॉट डॉट, अंधियारे सुने में कोई चीख गया है रात का पक्षी। आगे व्याख्या आ जाती है, पर उद्धृत अंश तक फंतासी का सम्मोहन पूरी व्यंजना के साथ सघन बना रहता है। अंधेरे में के स्वप्न और दिवा स्वप्न के भी इसी प्रकार के अनेक चित्र हैं जो फंतासी निर्मिति के क्षेत्र में मुक्तिबोध की अप्रतिम प्रतिभा का परिचय देने वाले हैं। विज्ञान की अपने समय तक की अधुनातन उपलब्धियों का ज्ञान भी उनकी फंतासियों को एक नई चमक देता है। नेब्यूला, इलेक्ट्रॉन आदि सब संगुफन संदर्भण मुक्तिबोध की प्रायः सभी फंतासियों के सार्थक रूप में हुआ है। इलेक्ट्रॉन का फंतासी के निर्माण में यह उपयोग दृष्टव्य है। पाषाण पीठिका हिलती सिलकती, डॉट 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 डॉट, कण कण कांप रहे जिनमें से झरते नीले इलेक्ट्रॉन, सब ओर गिर रही हैं चिनगियाँ नीली, मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आँखों में बिजली के फूल सुलगते। यहाँ सगुम्फन का सौंदर्य है। यह समूची फंतासी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर आधारित है, अतः नीले इलेक्ट्रॉन उक्ति इसकी आधारोक्ति है। पूरी फंतासी इसी कथन के आधार पर बनती है। संदर्भण अंधेरे में प्रायः नहीं है। संदर्भण की दृष्टि से चांद का मुंह टेढ़ा है, एक अंतरकथा आदि कविताएं देखी जा सकती हैं। संदर्भण एक विशद अर्थी शब्द है। मुक्तिबोध ने अपने समय तक की विज्ञान परक अधुनातनता के उल्लेख तो किए ही हैं। पुराणों तथा इतिहास से संबंधित अनेकानेक पात्रों एवं घटनाओं को व्यंजक बिंब तथा प्रतीक के रूप में संदर्भित किया है। मिथक और फंतासी का गहरा जन्मजात रिश्ता है। फंतासिये निर्मिति के सारे उपकरण, स्वप्न, दिवास्वप्न, अतीत, चिंतन, योजना, निर्माण और चेतन आदि मिथकों के निर्यामक रहे हैं। मिथकों के अध्येताओं में मिथकों के उद्भव की प्रक्रिया को लेकर बहुत विवाद रहा है। विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में यह स्वाभाविक भी है, बल्कि यही स्वाभाविक है। मानव जीवन के उदय काल की उस मानसिकता को सही रूप में समझ पाना जिसे एक ओर आदिम और बर्बर कहा जाता रहा है, दूसरी ओर जिसके द्वारा रचे गए मिथकों का संस्कृति की आधारशिला के रूप में मान्यता दी जाती रही हो, एक मुश्किल काम है। इस विषय में अंतिम बात का निर्णय तो अंत तक ना हो सकेगा। पृष्ठ संख्या 69। इसलिए इस पर बहस, जाहिर है कि मतभेद होंगे ही, जरूरी है। तभी तो प्रादिम मानसिकता को सही रूप में जानने की संभावना बनी रह पाएगी। मिथक रचना की प्रक्रिया को भी हम तभी वास्तविक रूप में जानने का दावा कर सकेंगे। फिलहाल जो स्थिति है उसमें मिथक और फंतासी की अनन्यता अधिक रेखांकित की जा रही है। आदिम विचारणा के चार प्रकारों में एक है फैंटेसी थिंकिंग, फंतासी विचार शैली। यही आदिम प्रवृत्ति मिथक और फंतासी को अविभाज्य बना देती है। कविता में फंतासी के ही माध्यम से कोई रचनाकार पुराने संदर्भों को सशक्त और सार्थक रूप में ला सकता है। मुक्तिबोध ने अनेक पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों तथा घटनाओं का प्रतीकात्मक रूप में उपयोग किया है, अथवा उन्हें व्यंग का माध्यम बनाया है। अंधेरे में ऐसे संदर्भ अपेक्षाकृत कम हैं। कुल दो संदर्भ, एक मनु का, दूसरा अजीगर्त कथा का। अंधेरे में कविता के मनु कामायनी के मन के प्रतिरूप हैं। कामायनी में मन के व्यक्तित्व की रेखाएं दी गई हैं। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान डॉट डॉट डॉट। उसी तपस्वी के लंबे थे देवदारु डॉट डॉट डॉट। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वी था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। मुक्तिबोध के मन का व्यक्तित्व यह है डॉट डॉट डॉट। बड़ा चेहरा डॉट डॉट डॉट, नुकीली नाक डॉट डॉट डॉट, भव्य ललाट डॉट डॉट डॉट, दृढ़ हनु। पुराणों में व्यक्तित्व चित्रण की परंपरा नहीं रही है, कुछ अपवाद हो तो हो। यह क्षेत्र तो कविता का ही है। मुक्तिबोध ने कामायनी पर अपनी पुस्तक लिखने के संदर्भ में तथा उसके पूर्व जिज्ञासा और अपने समय में चर्चित ग्रंथों से परिचित होने की प्रवृत्ति के नाते इस कृति का अध्ययन एकाधिक बार किया होगा। मनु का बिंब उन्हें वहीं से मिला, अन्यत्र प्रसाद से पहले उनके व्यक्तित्व का रेखांकित नहीं मिलता है। मुक्तिबोध ने मन के चित्रण में यह मौलिकता अवश्य दिखाई कि जहाँ प्रसाद मनु के कद और स्वास्थ्य पर स्वयं को केंद्रित करते हैं, वहाँ मुक्तिबोध उसकी मुखाकृति को उभारते हैं। दोनों ने ऐसा अपने अपने कथ्य के परिपार्श्व में किया है। प्रसाद को अपार दैहिक क्षमता से संपन्न चिर किशोर वयवली नित्य विलासी देव जाति के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करना था, क्योंकि कामायनी की समूची कथा मनु के ऐसे ही व्यक्तित्व पर आधारित है। मुक्तिबोध के लिए मनु अंधेरे में के संदर्भ में एक ऐसे अतिमानव के रूप में अपेक्षित थे जो अपने आभासों से उनके या काव्यनायक के दुर्लभ मन को साहस और सहने का धैर्य दे सके। इसके लिए एक प्रभावशाली चेहरे का बिंब आवश्यक था। मुक्तिबोध को यह चेहरा कामायनी से मिला। प्रसाद ने मनु के वलिष्ठ शरीर का प्रारूप दिया था। मुक्तिबोध ने धड़ के ऊपर चेहरे भी स्थापित कर दिया। धड़ की अनुरूपता में ही यह व्यक्तित्व अंधेरे में कविता में कई बार उभरता है। कभी रक्तालोक स्नात पुरुष, कभी युतिमय मुख वाले भोलेपन के भाव से भरे प्रेम भरे चेहरे, और कभी बिजली सी गति वाले किंतु फटे हाल व्यक्तित्व के रूप में मुक्तिबोध ने वस्तुतः मन को अपनी परम अभिव्यक्ति के प्रतीकात्मक बिंब के रूप में चुना है। चूंकि यहाँ मन की कथा नहीं है और संदर्भानुसार कई रूपों में रचना के अंत तक आते रहते हैं, मुक्तिबोध अवचेतन पृष्ठ संख्या 70 परख फंतासी का आधार लेकर अपने लिए यह गुंजाइश निकाल लेते हैं कि उन्हें मनुवादी न कहा जा सके। कौन मनु? यह उनकी मौलिकता का भी परिचायक हो सकता है, मनु प्रसाद के ही हैं। मुक्तिबोध ने उनका अपने ढंग से इस्तेमाल किया है। मुक्तिबोध ने मिथकों का उपयोग आमतौर पर से संदर्भण के ही स्तर पर किया है। इस पद्धति में यह सुविधा होती है कि रचनाकार के समक्ष आद्योपांत या कुछ दूरी तक चरित्र और प्रतीकत्व का निर्वाह करने की व्यवस्था नहीं होती। मिथकीय पात्र और घटना प्रसंग क्षणिक व्यंजना की भूमिका निभाकर रंगमंच से बाहर हो जाते हैं और रचनाकार को नए प्रसंगों की प्रस्तुति के लिए सुविधा मिल जाती है। रावण लकड़ी का बना एकलव्य मेरे सहचर मित्र दधीचि मुक्तिकामी पैरों देवकी शब्दों का अर्थ शकुंतला उर्मिला विक्षुब्ध बुद्धि के हनुमान चांद का मुंह टेढ़ा इंद्र एक भूतपूर्व विद्रोही आदि मिथकीय पात्रों का मुक्तिबोध ने इसी शैली में इस्तेमाल किया है। अंधेरे में अजीगर्त प्रसंग का भी इसी रूप में उपयोग हुआ है। काव्य नायक पागल ने आत्मभर्त्सना परक तथा आत्मोद्बोधमय गीत से व्याकुल होकर स्वयं को वैदिक ऋषि सुनह शेफ के लोभी स्वार्थी क्रूर पिता अजीगर्त की सी स्थिति में अनुभव करता है। अजीगर्त ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के हाथ अपना पुत्र 100 गायों के बदले बेच दिया था और बाद में 100 अन्य गायों के लाभ में स्वयं उसकी बलि देने के लिए तैयार हो गया था। भागवत रामायण ऐतरेय आदि कई ग्रंथों में यह कथा थोड़े बहुत अंतर के साथ आई है। मुक्तिबोध ने मध्यवर्ग की इस विडंबनापूर्ण मानसिकता पर ग्लानिपूर्वक बार बार प्रहार किया है कि अपने आत्मज आत्मसत्य की रक्षा करने या कि उसे चरितार्थ करने का साहस नहीं जुटा पाता और उसे वह किसी नंदग्राम में प्रक्षिप्त या निर्वासित कर देता है। मुक्तिबोध के ऐसे प्रयोगों को दृष्टांतीकरण की शैली भी कह सकते हैं। वस्तुतः मुक्तिबोध ने मिथकीय प्रकरणों का उपयोग अपने कथ्य के अनुरूप कई प्रकार से किया है। मसलन अंधेरे में कविता में भैरों का संदर्भण, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गिरुआ आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार विद्रूपीकरण की शैली में हुआ है। मिथक मूर्ति के विस्थापन और विद्रूपीकरण द्वारा समकालीन युग सत्यों की व्यंजना नई कविता तथा सठोत्री कविता का अपना तेवर रहा है, जिसके पीछे मुक्तिबोध की खुरदरी कविताओं की खास भूमिका रही है। लार टपकाते हुई आत्मा की कुतिया सतचित वेदना चंद है सविता है पोस्टर है कविता है चांद का मुंह टेढ़ा पृष्ठ 122 275 45। जैसे विसंवादी प्रयोग मुक्तिबोध के काव्य को नई अर्थ व्यंजकता देते हैं और उसकी संप्रेषणशीलता को द्विगुणित करते हैं। कर्मकांड और जादू से संबंधित मिथकीय उपकरणों का भी मुक्तिबोध ने बड़े सशक्त रूप में उपयोग किया है। और चेतन परक रचना पद्धति के कारण ऐसे प्रयोग बड़े ही प्रभावशाली बन पड़े हैं।